एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी जानकारी हम स्रोतों से लाएं उसे आपके लिए आसान और दिलचस्प बना सकें।
हाँ, और आज का विषय तो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम बात करने वाले हैं आधुनिकतावाद की, यानी मॉडर्निज्म की, एक ऐसा आंदोलन जिसने पिछली सदी में कला, साहित्य, अरे हमारी रोजमर्रा की सोच तक को बदल डाला।
बिल्कुल। और सफर में हमारे गाइड होंगे क्रिस्टोफर बटलर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने स्कॉलर थे वो।
हाँ, उनकी दो किताबें हैं मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आज की हमारी बातचीत इन्हीं पर आधारित होगी। हम इन्हीं के जरिए मॉडर्निज्म को समझने की कोशिश करेंगे।
और देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आधुनिकतावाद के जो आइडियाज थे, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उस टाइम में, उनका असर तो आज भी है, हमारी फिल्मों में, एड्स में, बिल्डिंग्स में।
हाँ, और शायद दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में भी।
बिल्कुल। तो इसे समझना मतलब एक तरह से आज के टाइम की पजल को सॉल्व करना है।
सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस्टोफर बटलर से। कौन थे ये जिन्होंने इतने मुश्किल समझे जाने वाले टॉपिक पे इतनी अच्छी तरह लिखा?
क्रिस्टोफर बटलर, जैसा आपने कहा, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ लिटरेचर तक नहीं थी।
अच्छा।
हाँ, वो कंपैरेटिव लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज के भी एक्सपर्ट थे। और 20वीं सदी के जो बड़े आर्ट मूवमेंट्स थे ना, मॉडर्निज्म और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, उन पर उनकी पकड़ बहुत गहरी मानी जाती है।
हाँ, और उनकी खास बात ये भी थी कि वो सिर्फ एक दायरे में नहीं सोचते थे, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं।
बिल्कुल। वो कनेक्शन बनाते थे लिटरेचर को पेंटिंग से, पेंटिंग को म्यूजिक से, फिर इन सबको फिलॉसफी और सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे थे उनसे जोड़कर देखते थे।
मतलब वो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बीच की कड़ियां पहचानते थे।
सही कहा। और उनकी एक और खूबी थी, मुश्किल विचारों को बिना बहुत साफ और सरल भाषा में समझा देते थे। मॉडर्निज्म जैसा टॉपिक अक्सर बहुत एकेडेमिक लगता है।
हाँ, भारी भरकम सा
है ना, लेकिन बटलर ने उसे काफी आसान बना दिया। और उनका नजरिया बैलेंस्ड है। वो ना तो अंधा होकर तारीफ करते हैं, ना पूरी तरह नकारते हैं, बारीकी से विश्लेषण करते हैं।
तो फिर बटलर के हिसाब से ये मॉडर्निज्म आखिर था क्या? क्या बस कपड़ों या बिल्डिंग्स का कोई नया स्टाइल?
नहीं, स्टाइल से कहीं ज्यादा गहरा था ये। आप सोचिए, 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत, वो टाइम। यूरोप, अमेरिका, बड़े बदलाव हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थीं, शहर बढ़ रहे थे, साइंस में नई खोजें हो रही थीं, आइंस्टीन, फ्रॉयड, पुरानी व्यवस्थाएं हिल रही थीं।
हाँ, काफी उथल पुथल का दौर था।
बिल्कुल। तो बटलर कहता है कि मॉडर्निज्म इन सब बदलावों, इस उथल पुथल, इस एक तरह के संकट का जवाब था, कला की दुनिया का, सोच की दुनिया का।
अच्छा, तो ये एक तरह का रिएक्शन था उस बदलती दुनिया को समझने और दिखाने की कोशिश।
एग्जैक्टली। और बटलर का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि देखो, आर्टिस्ट अलग अलग फील्ड में थे। स्पेन में पिकासो पेंटिंग कर रहे थे, आयरलैंड में जेम्स जॉयस लिख रहे थे, रूस में स्ट्रॉविंस्की म्यूजिक बना रहे थे।
हाँ, सब अलग अलग,
लेकिन उन सब में कुछ कॉमन था। कुछ बेसिक सवाल थे, एक्सपेरिमेंट करने के तरीके थे, एक साझा इरादा था, और वो इरादा था 19वीं सदी के रियलिज्म को चैलेंज करना।
रियलिज्म यानी वो सोच के आर्ट का काम दुनिया को हूबहू दिखाना है।
हाँ, वही। और साथ ही वो एनलाइटनमेंट के आइडियाज पर भी सवाल उठा रहे थे, मतलब वो तर्क वाली बात और ये मानना कि दुनिया सीधी रेखा में तरक्की कर रही है। मॉडर्निस्ट को लगा कि ये पुराने तरीके अब काफी नहीं है, दुनिया की नई सच्चाई जो ज्यादा बिखरी हुई थी, ज्यादा उलझी हुई, उसे ये पकड़ नहीं पा रहे।
तो बटलर की किताबों का मकसद सिर्फ इतिहास बताना नहीं है?
नहीं, उससे ज्यादा है। वो मॉडर्निज्म को डिकोड करना चाहते हैं, उसे जो रहस्यमय या मुश्किल समझा जाता है ना, उस धारणा को तोड़ना चाहते हैं।
अच्छा।
वो दिखाना चाहते हैं कि मॉडर्निस्ट आर्ट के जो अजीब टूटे फूटे रूप दिखते हैं, उनके पीछे भी एक लॉजिक है, एक सोच है। ये जानबूझकर की गई खोज थी इंसान के अनुभव की, मन के गहरे हिस्सों की, और खुद आर्ट क्या है इसकी।
बटलर मॉडर्निज्म को म्यूजियम की चीज नहीं, एक जिंदा ताकत मानते हैं।
हाँ, जो आज भी हमें प्रभावित कर रही है।
बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। आपने कहा था एक संकट की बात, जिसे बटलर प्रतिनिधित्व का संकट कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, आसान भाषा में क्या मतलब हुआ इसका?
आसान भाषा में कहें तो सवाल ये खड़ा हो गया था कि आर्ट असलियत को दिखाए कैसे। पुरानी तकनीकें जो बाहरी दुनिया की नकल पर जोर देती थी,
हाँ,
वो अब काफी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि दुनिया ही बदल गई थी। आइंस्टाइन ने बताया टाइम और स्पेस रिलेटिव हैं। फ्राइड ने दिखाया कि हमारे मन का कितना बड़ा हिस्सा छिपा हुआ है, अतार्किक है। युद्धों ने तरक्की के आइडिया पर सवाल खड़े कर दिए।
सही।
तो कलाकारों को लगा कि भाई अगर दुनिया इतनी अस्थिर है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, बिखरी हुई है, तो उसे पुराने साफ सुथरे तरीकों से कैसे दिखाएं? ये एक गहरा संकट था, आर्ट दुनिया को रिप्रेजेंट कैसे करे।
अच्छा, तो ये सिर्फ महसूस नहीं किया गया, इसने आर्ट बनाने के तरीके भी बदले। लिटरेचर में क्या हुआ?
लिटरेचर में राइटर्स ने बाहरी घटनाओं के सीधे वर्णन से हटकर इंसान के मन की भीतरी दुनिया पर फोकस करना शुरू किया। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने एक नई तकनीक अपनाई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस,
चेतना की धारा।
हाँ, सोचिए हमारे दिमाग में ख्याल कैसे आते हैं, एक के बाद एक, साफ वाक्यों में, नहीं ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, कूदते फांदते अधूरे, कभी यादें कभी कुछ और।
एग्जैक्टली। ये तकनीक उसी बिखरे हुए बहते हुए मेंटल फ्लो को पकड़ने की कोशिश करती है। टीएस एलियट की कविताएं हैं जैसे द वेस्ट लैंड, उसमें कहानी के टुकड़े मिलते हैं, अलग अलग आवाजें, कोई सीधी लय नहीं। ये एक तरह से फ्रॉयड का लिटरेरी जवाब था, अंदर की सच्चाई ज्यादा जरूरी हो गई।
पर विजुअल आर्ट्स में, पेंटिंग वगैरह में, वहां भी ऐसा ही कुछ?
बिल्कुल, वहां तो जैसे क्रांति चल रही थी, पेंटिंग में चीजों को ठीक वैसा बनाने की परंपरा टूट रही थी। शुरुआत इंप्रेशनिज्म से हुई, फिर पोस्ट इंप्रेशनिज्म आया, वॉन गॉग जैसे आर्टिस्ट, भावनाओं को रंगों से दिखाना। फिर तो और बड़े बदलाव आए, क्यूबिज्म में पिकासो ने चीजों को एक साथ कई एंगल से दिखाया, फाविज्म में जंगली भड़कीले रंग यूज हुए, और फिर आई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट,
जहां बाहरी दुनिया को दिखाना ही छोड़ दिया।
हाँ, कांडेंस्की, मॉन्ड्रियान, इन्होंने सिर्फ रंगों, रेखाओं, आकारों से भावनाओं या आइडियाज को एक्सप्रेस किया।
ये दिलचस्प है कि फोटोग्राफी के आने का भी इसमें रोल था।
हाँ, बटलर ये पॉइंट भी उठाते हैं, जब कैमरा आ गया जो रियलिटी को हूबहू कॉपी कर सकता था, तो कुछ आर्टिस्ट को लगा कि अब पेंटिंग का काम सिर्फ नकल करना नहीं रहा, उन्हें कुछ नया करना था जो कैमरा नहीं कर सकता।
अच्छा, इससे उन्हें और आजादी मिली प्रयोग करने की।
बिल्कुल, और इसी दौर में कोलाज जैसी तकनीकें भी आईं, अखबार की कतरन, कपड़े, ये सब पेंटिंग का हिस्सा बनने लगे। ये भी रियलिटी के टुकड़ों को आर्ट में लाने का एक नया तरीका था।
एक और चीज जो मॉडर्न आर्ट से जुड़ती है वो है प्रिमिटिविज्म। इसका क्या मतलब था?
देखिए, कई मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट और राइटर्स को लगने लगा था कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर है वो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, बनावटी, शायद थक गया है, उसमें असली दम नहीं रहा।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
तो वो प्रेरणा के लिए दूसरी संस्कृतियों की तरह देखने लगे, खासकर अफ्रीका, ओशिनिया की आर्ट या यूरोप की ही फोक आर्ट, बच्चों की कला। उन्हें लगता था ये ज्यादा असली है, ज्यादा डायरेक्ट, पावरफुल, इमोशनली सच्ची है।
पिकासो की वो पेंटिंग है ना,
बिल्कुल,
लेस डेमोसेल्स डी एबिंगनन, उसमें अफ्रीकी मुखौटों का असर साफ दिखता है।
और ऐसे ही म्यूजिक में इगोर स्ट्रेविंस्की का बैले द राइट ऑफ स्प्रिंग, उसके म्यूजिक में एक जंगली आदिम ऊर्जा है, उसने उस समय ऑडियंस को शॉक कर दिया था।
तो ये पश्चिमी परंपराओं से बचकर कुछ नया खोजने की कोशिश थी।
हाँ, अभिव्यक्ति के ज्यादा मौलिक, ज्यादा बुनियादी तरीके खोजने की कोशिश।
और म्यूजिक की बात चलिए तो वहां भी बड़े बदलाव आ रहे थे, है ना?
हाँ, बिल्कुल, संगीत में सदियों से एक सिस्टम चला आ रहा था, टोनालिटी, एक मेन सुर, बाकी उसके आसपास,
जिससे एक सुकून मिलता है।
हाँ, आर्नोल्ड स्कोनबर्ग जैसे कंपोजर्स ने सिस्टम को ही तोड़ दिया, उन्होंने अटोनल म्यूजिक बनाया, कोई एक मेन सुर नहीं, सुनने में बेचैन करने वाला लग सकता है।
अच्छा,
बाद में सीरियल तकनीक आई जिसमें सुरों को एक मैथमेटिकल तरीके से अरेंज किया जाता था। स्ट्रेविंस्की ने रिदम और ताल के साथ जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स किए, फोक म्यूजिक, नॉन वेस्टर्न म्यूजिक की आवाजें यूज होने लगी, यहां तक कि शहर की आवाजें, मशीनें, ट्रैफिक, वो भी म्यूजिक का हिस्सा बनी।
मतलब म्यूजिक को उसकी पुरानी सीमाओं से बाहर निकाला जा रहा था।
बिल्कुल।
आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, क्या आर्किटेक्चर और डिजाइन भी इससे प्रभावित हुए?
अरे बिल्कुल, आर्किटेक्चर में भी मॉडर्निज्म का गहरा असर पड़ा। ले कॉर्बुजिए, बॉहॉस स्कूल, ये बड़े नाम है, उन्होंने फॉर्म फॉलोज फंक्शन वाले आइडिया पर जोर दिया।
मतलब इमारत कैसी दिखेगी ये उसके काम से तय होगा।
हाँ, साफ सुथरी लाइनें, जियोमेट्रिक शेप्स और नई इंडस्ट्रियल मटेरियल, स्टील, कंक्रीट, ग्लास, इनका इस्तेमाल बढ़ा। पुरानी इमारतों जैसी सजावट को गैर जरूरी माना गया। ले कॉर्बुजिए ने तो कहा था, घर रहने के लिए एक मशीन है।
ओह।
इसके पीछे एक सोच ये भी थी कि अच्छा, फंक्शनल डिजाइन सबके लिए हो, डिजाइन को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश थी।
इन सारे बदलावों के पीछे क्या कोई कॉमन थ्रेड था? मतलब इंसान के बारे में सोच में भी कुछ बदल रहा था।
हाँ, बटलर इसे सब्जेक्ट का संकट कहते हैं, क्राइसिस ऑफ द सब्जेक्ट। 19th सेंचुरी में इंसान को एक स्थिर, रैशनल प्राणी माना जाता था। लेकिन नीचे, फ्रॉयड, इनके विचारों ने इस धारणा को हिला दिया। नीचे ने कहा ईश्वर मर चुका है, फ्रॉयड ने दिखाया कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें कितना कंट्रोल करता है।
तो अब आर्ट और लिटरेचर में इंसान को कैसे दिखाया जाने लगा?
अक्सर बिखरा हुआ अस्थिर, अपने ही मन से अनजान, दुनिया से कटा हुआ एलिनेटेड। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड इसी बिखराव को दिखाती है। फ्रांस काफ्का के नॉवेल्स के कैरेक्टर्स, वो अक्सर एक अजीब बेतुकी दुनिया में फंसे होते हैं
जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है।
हाँ, ये मॉडर्न इंसान की बेचैनी और अकेलेपन का पोर्ट्रेट था।
कर रही, और इंसान खुद भी बिखरा हुआ है, तो फिर आर्ट का मकसद क्या बचा?
ये बड़ा सवाल था, और एक अहम जवाब था, कला की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ आर्ट।
इसका क्या मतलब?
इसका मतलब था कि आर्ट को बाहरी दुनिया दिखाने या कोई नैतिक संदेश देने की जरूरत नहीं है। आर्ट अपने आप में जरूरी है। उसका काम है अपने ही साधनों को एक्सप्लोर करना, रंग, रेखा, ध्वनि, शब्द।
कला का विषय कला खुद बन गई।
बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। पेंटिंग किसी चीज को नहीं दिखाती, बस रंगों और फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन होती है। म्यूजिक में भी ध्वनि और स्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ा, इसे फॉर्मलिज्म कहते हैं, यानी आर्ट के फॉर्म पर जोर देना कंटेंट से ज्यादा।
और बटलर अवांट-गार्डे की भी बात करते हैं, ये कौन लोग थे?
अवांट-गार्ड, ये फ्रेंच वर्ड है, मतलब सेना की सबसे आगे वाली टुकड़ी। आर्ट में ये टर्म उन आर्टिस्ट के लिए यूज होता है जो सबसे ज्यादा रेडिकल एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जो नियमों को तोड़ते हैं।
अच्छा,
मॉडर्निज्म के दौर में ऐसे कई ग्रुप्स थे। उनका लक्ष्य सिर्फ नई आर्ट बनाना नहीं था, वो अक्सर समाज को भी बदलना चाहते थे। उनकी एक स्ट्रैटेजी थी बुर्जुआ यानी मिडिल क्लास को शॉक करना, उनकी सोच को चैलेंज करना।
क्या इनका कोई पॉलिटिकल एंगल भी था?
हाँ, कुछ का था। जैसे इटली में फ्यूचरिज्म मूवमेंट फासिज्म से जुड़ा था, वो स्पीड, मशीन, वायलेंस को ग्लोरीफाई करता था। वहीं रूस में कंस्ट्रक्टिविज्म मूवमेंट क्रांति के बाद कम्युनिस्ट आइडिया से जुड़ा, वो आर्ट को सोशल चेंज का टूल बनाना चाहते थे। लेकिन बटलर एक आयरनी की तरफ भी इशारा करते हैं।
क्या?
कि जो आर्ट कभी इतनी विद्रोही थी, चौंकाने वाली थी, वो टाइम के साथ खुद एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन गई, म्यूजियम में सज गई, मार्केट में महंगी बिकने लगी।
हाँ, ये तो होता है, जो कल का विद्रोह था वो आज का क्लासिक बन गया।
बिल्कुल।
तो अगर हम बटलर के एनालिसिस के मेन पॉइंट्स को समेटें तो कौन सी बातें सबसे अहम निकलती हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और बेसिक बात तो वही है, प्रतिनिधित्व का संकट। ये रियलाइजेशन के पुराने तरीके मॉडर्न एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए काफी नहीं है, इसी ने इतने सारे नए एक्सपेरिमेंट्स को जन्म दिया।
हाँ, चाहे वो लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो या पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्शन।
दूसरा, व्यक्तिपरकता और आंतरिक दुनिया पर जोर। आर्ट का फोकस बाहरी दुनिया से हटकर इंसान के मन, उसकी चेतना, उसके अनकॉन्शियस पर चला गया। फ्रॉइड का असर साफ है,
अंदर की दुनिया ज्यादा जरूरी हो गई। तीसरा, विखंडन और बहुलता। वो पुराना विश्वास टूट रहा था कि दुनिया एक है, समझी जा सकती है। इसकी जगह आर्ट में बिखरे हुए नजरिए, कई आवाजें, टूटी फूटी कहानियां दिखने लगी।
चौथा, परंपरा और नवीनता का रिश्ता। ऐसा नहीं कि मॉडर्निस्ट ने अतीत को पूरी तरह फेंक दिया। बटलर दिखाते हैं कि वो अक्सर पुरानी कल्चरल ट्रेडिशंस के टुकड़ों को उठाते थे।
हाँ, फ्रैगमेंट्स को,
लेकिन उन्हें नए कॉन्टेक्स्ट में रखकर उनसे कुछ नया मतलब निकालने की कोशिश करते थे। अतीत से रिश्ता था, पर वो कॉम्प्लेक्स था, क्रिटिकल था।
और पांचवा, कला की स्वायत्तता और औपचारिकता। जब आर्ट बाहरी दुनिया की नकल से आजाद हुई तो उसने अपने ही मीडियम पर फोकस किया। रंग, रेखा, ध्वनि, शब्द, ये कैसे काम करते हैं?
बिल्कुल, कला खुद अपनी जांच करने लगी।
बटलर कुछ यादगार लाइंस या कोट्स का भी जिक्र करते हैं जो मॉडर्निज्म की स्पिरिट को पकड़ते हैं। जैसे एज्रा पाउंड का वो नारा, इसे नया बनाओ, मेक इट न्यू।
हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, परंपरा से हटकर कुछ करने पर कितना जोर था, क्योंकि पुराने फॉर्म्स बेकार लग रहे थे।
या फिर कवि W.B. Yeats की वो लाइन, केंद्र टिक नहीं सकता, द सेंटर कैनॉट होल्ड। ये उस एहसास को दिखाती है कि समाज, कल्चर, मीनिंग के जो पुराने सेंटर थे वो बिखर रहे थे, सब कुछ अनिश्चित लग रहा था।
और E.M. फोस्टर का वो आग्रह, सिर्फ जोड़ो,
ओनली कनेक्ट,
मॉडर्न लाइफ के बिखराव के बीच, या शायद उसी की वजह से, ये इंसानी रिश्तों, आपसी समझ की जरूरत को दिखाता है, टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश।
और कलाकार पॉल क्ली का ये कहना भी बहुत गहरा है, कला दृश्य को पुनः प्रस्तुत नहीं करती बल्कि ये दृश्य बनाती है।
हाँ, मतलब आर्ट का काम सिर्फ नकल करना नहीं बल्कि जो अनदेखा है, छिपा हुआ है, भावनाएं, विचार, देखने का नया तरीका, उसे सामने लाना है, उसे विजिबल बनाना है।
और आखिर में T.S. एलियट की द वेस्टलैंड से वो लाइन, ये टुकड़े मैंने अपने खंडरों के सहारे रखे हैं।
ये उस कोशिश को लिखाता है कि कैसे एक टूटी फूटी कल्चरल विरासत के बचे खुचे टुकड़ों से ही कुछ नया मीनिंग, कुछ सहारा बनाने की कोशिश हो रही थी। ये सारे आइडियाज हमें उस दौर की सोच और आर्टिस्ट के इरादों के झलक देते हैं।
चलिए अब इस पर आते हैं कि ये सब जानना आज हमारे किस काम का है। क्या ये सिर्फ एकेडमिक बातें हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई कनेक्शन है?
ये हमें आज के कल्चर को बेहतर समझने में मदद करता है। हम आज जो मीडिया देखते हैं, फिल्में, एड्स, म्यूजिक वीडियो,
हाँ,
उनमें कई टेक्निक्स यूज होती हैं। नॉन लीनियर कहानी, फास्ट कट्स, कोलाज, मोंटाज, इन सब की जड़ें मॉडर्निज्म में हैं। इन्हें जानने से हम मीडिया को ज्यादा समझदारी से देख सकते हैं।
सही कहा, सिर्फ देखते नहीं समझते भी हैं।
दूसरी बात, मॉडर्निज्म हमें कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी यानी जटिलता और अस्पष्टता के साथ सहज होना सिखाता है। मॉडर्निस्ट आर्ट अक्सर सीधी नहीं होती, वो एक सही मीनिंग नहीं देती, कई संभावनाएं खोलती हैं।
हाँ, सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल, आज की दुनिया भी तो ऐसी ही कॉम्प्लेक्स है जहाँ हर चीज का आसान जवाब नहीं होता। ये हमें अनिश्चितता को एक्सेप्ट करना और अलग अलग नजरियों को समझना सिखा सकता है।
फील्ड के नियमों को चैलेंज किया, पूछा क्या चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, कोई और तरीका नहीं हो सकता?
हाँ, ये सवाल पूछने की हिम्मत,
यही हिम्मत किसी भी काम में नई राहें खुल सकती है।
और चौथी बात, ये शायद हमें खुद को बेहतर समझने में भी मदद कर सकता है। मॉडर्निस्ट ने इंसान के मन की गहराइयों, उसकी चेतना, उसके बिखरे हुए स्व की जो खोज की, वो हमें अपने अंदर के विचारों, भावनाओं, विरोधाभासों को समझने के लिए एक लैंग्वेज दे सकती है।
अपनी आंतरिक दुनिया की जटिलता को स्वीकार करने में मदद।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से अगर एक मुख्य बात निकालनी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए तो शायद यही कि मॉडर्निज्म सिर्फ कुछ आर्ट स्टाइल्स का नाम नहीं, बल्कि दुनिया को, इंसान को और खुद आर्ट को देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव था। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हमें कभी कभी डराती है, वो असल में उस दौर की और शायद आज की भी सच्चाई को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश थी।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वो व्यक्तिगत प्रयोग और सामाजिक सरोकार के बीच का रिश्ता। ये आर्टिस्ट अक्सर बहुत पर्सनल, बहुत यूनिक चीजें बना रहे थे, लेकिन वो अपने टाइम के बड़े सवालों से भी जुड़े हुए थे, युद्ध, शहर, टेक्नोलॉजी, परंपरा।
हाँ, ये कनेक्शन जरूरी था।
और दूसरी बात, इसका असर कितना टिकाऊ रहा है। ये सिर्फ 100 साल पहले की बात नहीं है, इसके बीज आज भी हमारी सोच में, हमारे कल्चर में गहरे धंसे हुए हैं। शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि जो चीजें उस समय इतनी रेडिकल और अजीब मानी जाती थी, उनमें से कितनी आज हमें नॉर्मल लगती हैं।
बिल्कुल। और शायद सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। आधुनिकतावाद ने हमें दुनिया को देखने का जो एक नया, शायद ज्यादा बिखरावा, ज्यादा व्यक्तिपरक लेंस दिया, क्या वो आज के इस डिजिटल, तेज रफ्तार, सूचनाओं से भरी और अक्सर बिखरी हुई महसूस होने वाली दुनिया में पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।